نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاء اللہ تعالی تعوذ اور بسم اللہ کو دیکھیں گے، بسم اللہ یا تسمیہ جس کو کہتے ہیں، اور تعوذ. تعوذ معنی اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کو کھولیں گے، اس کی تلاوت شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو دو چیزیں یہ لازمی ہم پڑھیں گے ہمیشہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعوذ کی وجہ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ مانگ لیا کریں، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں جب بھی آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں. اس وجہ سے ہم جب قرآن کھولیں گے، جب پڑھنا شروع کریں گے، تو کبھی بھی اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہم نے پڑھنی ہے. اب یہ آج میں انشاءاللہ تعالی ان دو باتوں کا، آپ کو تعوذ کا اور بسم اللہ کا، آپ کو میننگ بتاؤں گی، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھرو آؤٹ قرآن کریم میں بار بار ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آج ہم تعوذ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ. اعوذ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تعوذ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں اس کی تلقین کی گئی ہے؟ اس کا معنی ہے میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. یہ خاص طور پہ جب کوئی شر ہو دنیا کا یا آخرت کا، تو اس شر سے بچنے کے لیے انسان پناہ میں آتا ہے. کس کی؟ اللہ تعالی کی. تعوذ جو ہے نا، یہ توحید کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے، بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے توحید کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تعوذ میں آپ کیا کہتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ کس کی لی جاتی ہے اور کیوں لی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، اس نے پناہ لے لی کہیں جا کے، فلاں نے پناہ لے لی، فلاں نے. کیوں پناہ لی جاتی ہے؟ پناہ گزین بھی کہتے ہیں. جب انسان کو کہیں خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کسی طاقتور کی پناہ میں آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور جب وہ کسی طاقتور کی پناہ لیتا ہے تو دراصل وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، میں خود ہیلپ لیس ہوں. وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو کسی طاقتور کی پناہ میں آتا ہے نا. تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم اعوذ میں کیا کہتے ہیں؟ میں پناہ لیتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ، میں بہت کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے، اس لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. یعنی پناہ ہمیشہ لی جاتی کس کی؟ طاقتور ہستی کی. ظاہر ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو آپ کو اپنے حصار میں لے کر اور آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے، اسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں نا، اسی کی پناہ میں آتے ہیں نا. کسی بچے کو تو نہیں آپ کہتے مجھے اپنی پناہ دے دو. دیکھیں हमेशा आप किसी ताकतवर को देखते हैं। तो यानी जब आप ये कलमा कहते हैं तो आपने ये एतराफ किया कि अल्लाह बहुत ताकतवर है, वो मुझे पनाह दे सकता है, वो मुझे बचा सकता है, और आपने ये भी एतराफ कर लिया कि मैं बहुत कमजोर हूं। ये तो एक इबादत हो गई ना। इसी में इंसान फिर अपना जोफ बताता है, अपनी कमजोरी बताता है। तो जब आप इस्तेआज़ा लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा कलिमा कह रहे हैं जिसमें तौहीद का आप इकरार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूं कि तावुज़ में चार चीजें हैं, आप इनको लिख लीजिए। क्या चार चीजें हैं? नंबर वन, मुस्ताईज यानी पला तलब करने वाला, वो कौन है? वो मैं हूं, आप हैं, सब इंसान है, सबको पनाह चाहिए। नंबर टू, कलमा इस्तेआजा। आपको ये नहीं भी अरबी में आते तो आप आगे लिख लें, पनाह का कलमा क्या है, यानी किस कलमा से आप पनाह मांगते। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है? तो ये पनाह का कलमा है। अब तीसरी चीज, मुस्ताद बिही, यानी किसकी पनाह तलब करना चाहते हैं, किसको पुकार रहे हैं कि मुझे पनाह दे दो। वो मुस्ताज भी ही है, वो है अल्लाह ताला। और चौथी चीज, मुस्ताज मिन हो, किससे आप पनाह चाहते हैं, किससे आप बचना चाहते हैं, किसके शर से आप चाहते हैं कि मेरी हिफाजत की जाए, मुझे पनाह दी जाए। वो मुस्ताज मिन हो जाता है और वो है शैतान। तो यहां पर ये चार चीजें हैं इस कलिमा में जो हमने ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, कि मैं पनाह चाह रही हूँ अल्लाह से, और किस के शर से अल्लाह की पनाह चाह रही हूँ, किसके शर से, शैतान के शर से। इब्ने कय्यिम ने इस मामले में एक बच्चे की मिसाल दी है, अब इससे आपको बात समझ आ जाएगी। कहते हैं कि एक बच्चे को किसी के शर का खतरा हुआ, यानी कोई उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे था। अब बच्चा कमजोर है, किसी की ज्यादती का, कोई उसको कत्ल करना चाहता है और उसके पीछे आता है, तो बच्चा दौड़ पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। अचानक उसके सामने उसका बाप आ जाता है। जब बच्चा बाप को देखता है तो कैसे उसके दिल को करार आ जाता है, कैसे वो मुतमईन हो जाता है, कैसे वो जाके अपने बाप से लिपट जाता है, और बाप अपनी बाहें खोल के बच्चे को अपनी आगोश में ले लेता है। उसको अब ये तसल्ली हो गई है बच्चे को कि अब मैं महफूज हूं, मेरा बाप आ गया, मेरे बाप ने मुझे थाम लिया, अब मैं बच जाऊंगा, अब कोई मुझे नुकसान नहीं दे सकता। तो इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि ये तो मखलूक की मिसाल है, अल्लाह की मिसाल तो कोई दे ही नहीं सकता जो रब्बे कायनात है। सोचें, ये बच्चा बाप की पनाह में आके अपने आप को महफूज समझता है, हालांकि बाप तो एक इंसान है ना, जो अल्लाह की पनाह ले लेगा, फिर उसको कितना करार नसीब हो जाना चाहिए कि मैं तो उस ताकतवर की पनाह में आ गया, अब कोई चीज मुझे नुकसान नहीं दे सकती। तो आप इसको जब इस मिसाल से समझेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने कितने बड़े और कितने ताकतवर की पनाह ले ली। अब क्या मजाल है शैतान की कि वो आपके ऊपर हमलावर हो जाए। तो सोच लें फिर ये कितना बड़ा कलमा है, कितनी अजीम बात है। और हम किस चीज से पनाह मांग रहे? शैतान से। क्यों? इसलिए कि शैतान ना हर शर का सोर्स है, हर गुनाह की जड़ है, हर नाफरमानी कराने की तरफ इंसान को लेकर जाता है। शैतान जो है ये जिन्नों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। फर्क ये है कि जिन्नों के शैतान नजर नहीं आते, इंसानों के शैतान आपको नजर आ जाते हैं, वरना शैतान इंसानों में भी है। आज एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शयातीन है? फरमाया हाँ, इंसानों में भी हैं। अब वो शयातीन क्या करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो इतना जरूरी है ये कलिमा पढ़ना, क्योंकि शैतान से अल्लाह की पनाह में आके ही हम बच सकते हैं, उससे हम खुद उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जब उसको अल्लाह ताला ने निकाला था ना, ये बड़े इबलीस की बात हो रही है। अव्वल तो सिर्फ वो ही शैतान नहीं है, मैंने आपको बताया शयातीन बहुत सारे हैं, उसके जाहिर लश्कर भी हैं, उसके चांटे चेले भी हैं, और इंसानों में भी उसके मददगार हैं या उसके एजेंट्स हैं। तो क्या इतना जरूरी है शैतान से अल्लाह की पनाह में आना? जी, इसलिए कि इसने दावा किया था अल्लाह ताला के आगे कि ए अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं इब्ने आदम में से एक एक को गुमराह करूंगा, सब के सब को, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। यानी उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही ये बना लिया, उसकी ये जॉब है, वो ये काम 24/7 कर रहा है, वो कभी ब्रेक नहीं लेता, वो कभी वेकेशन पे नहीं जाता, वो कभी सुस्ती नहीं इसमें दिखाता, वो ये काम दिन रात कर रहा है और किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई नेक है यो या बात है, कोई आलिम है या कोई बुरा इंसान है, कोई अल्लाह का वली है चाहे, या कोई अल्लाह से दूर है, किसी को नहीं छोड़ता। मोमिन है, काफिर है, हर एक के पीछे पड़ा। उसका मकसद इब्ने आदम को, जितनी आदम की औलाद है, इसको गुमराह करना, ये उसका मकसद है। इसका जो नाम है शैतान, श तो नून, ये है इसका मखरज जिससे ये शैतान लफ्ज बना, शैताना से। हर एक अरबी का जो लफ्ज है ना, इसका एक रूट होगा, एक उसकी असल होगी, एक उसकी यानी समझ ले एक बुनियाद होगी जिससे वो लफ्ज निकलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? दूर होना। तो शैतान जो है दूर है अल्लाह की रहमत से, नेक अमल से, सिराते मुस्तकीम से। और जब इंसान ये कलिमा पढ़ता है और बार बार पढ़ता है या अल्लाह का जिक्र करता है, तो शैतान भाग जाता है। हदीस में आता है, बंदा है मोमिन अपने शैतान को थका मारता है जैसे तुम अपनी सवारी सफर में थका मारते हो। क्या मतलब? जैसे इंसान सवारी पे बैठे, ऊंट है या घोड़ा है, तो सुबह से उसको दौड़ाता जाए दौड़ाता जाए दौड़ाता जाए, और वो सवारी शाम तक थक के चूर हो जाए, गिर जाए। इब्ने कय्यम ने फरमाया कि यही हाल इंसान का होता है, जैसे कि इस हदीस में आता है कि शैतान को जो बंदा है मोमिन थका देता है जिक्र कर करके। तो इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि ये कोड़े की तरह है, अल्लाह का जिक्र जो है ना, वो कोड़े की तरह है, शैतान की पीठ पर ये कोड़ा पड़ता है। और अगर कोई दिन रात कोड़े मार रहा है, तो सोचे फिर कि वो उस शैतान का क्या हाल होगा। इसका मतलब है कि अगर जितना ज्यादा हम अल्लाह का जिक्र अपनी जुबान पर जारी रखेंगे और ये तावुज पढ़ते रहेंगे, उतना ही हम शैतान के वारों से महफूज रहेंगे। वरना शैतान आके इंसान के दिल पर जम के बैठ जाता है। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है। फिर जब वो देखता है कि ये अल्लाह का जिक्र भूल गया है, तो फिर आके जम जाता है। इसका मतलब अल्लाह का जिक्र जरूरी है। और देखिए, हम तो इसको देख नहीं सकते हैं ना, अल्लाह इसको देख सकता है, वो ही हमें अपनी पनाह में ले सकता है। मगर जरूरी है कि हम अल्लाह की पनाह चाहें, मांगे अल्लाह से, अल्लाह हमें अपनी पनाह दे दे, मदद मांगे अल्लाह ताला से। एक सहाबी थे, उनको चलते चलते उनकी सवारी ने जैसे एक बिदक गई, गिराने लगी, तो उन्होंने कहा शैतान बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मत कहो, क्योंकि इससे शैतान खुश होता है, फूलता है कि देखो मैंने इसका काम बिगाड़ दिया, तो देखो अब ये मेरा नाम ले रहा है। तुम कहो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम सुन के शैतान कमजोर होगा, हकीर होगा, जलील होगा, छोटा हो जाता है वो। तो इसलिए कभी बच्चे गिरने लगते हैं, पता है ना, बड़े कहते हैं बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, तो वो ये नहीं कह रहे होते कि अल्लाह के नाम से गिर जाओ, वो कह रहे होते हैं अल्लाह का नाम। अब आगे हम बिस्मिल्ला भी आज देखेंगे, तो यानी शैतान को उस वक्त ना याद करें और ना ये कहें कि शैतान की वजह से ये हो गया, शैतान बर्बाद हो जाए, वो तो खुश होगा। तो ये हमारा दिन और रात का समझने का वजीफा होना चाहिए, क्योंकि शैतान तो हमें बर्बाद करने के दर पे है, हमारी दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद करना चाहता है। हमें अलर्ट रहना होता है कि हम पहचाने कि शैतान इस वक्त मेरे अंदर ये वसवास डाल रहा है और मैंने अल्लाह की पनाह लेनी है। अल्लाह ताला की पनाह लेने के लिए जो कलिमात हैं, एक तो ये कलिमा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरा एक और कलिमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह लेती हूँ अल्लाह की जो असमी है, सुनने वाला है, अल अलीम है, जानने वाला है, मिन शैतान रजीम, शैतान रजीम से। रजीम का माना क्या है? रजीम रजम से है, रजम करना होता है ना, पत्थर मार मार के मारना, तो शैतान भी जो है अल्लाह ताला ने इसको धुतकारा हुआ, रद्द किया हुआ, कर्स्ड है ये, अल्लाह ने इसको दूर फेंक दिया। तो हम जब ये कलिमा कह रहे हैं तो फिर हम ये बात का एतराफ कर रहे हैं कि शैतान रजीम से मैं अल्लाह की पनाह में आ रही हूं। दूसरा एक और कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़्थिही, शुरू का तो वही है आखिर में मिन हमजी ही, हम्ज हम आजाते शयातीन कहते हैं ना, हम्ज कहते हैं पोक करने को, जो वो पोक करता है मुझे। अब वो कैसे करता है ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसका माना उलमा ने मजनून करना भी लिया है, ऐसा बावला कर देता है, और वसवास भी लिया है, और नफ ही, नफ कहते हैं नफखाए उला नफखाए सानिया, ये हम पढ़ते हैं ना, तो कयामत के जो नफखा आते हैं फूंकना, सूर का फूंकने के लिए, तो नफखा कहते हैं फूंकने को, तो उसकी फूंकों से भी, वो फूंके भी मारता है इंसान के दिल पे, तो उससे मुराद क्या है, उसका तकब्बुर मुराद है, और कैसे वो फूंके मारता है वल्लाहु आलम, उसने भी तकब्बुर किया था, वो इंसान को भी तकब्बुर में डालता है। और फिर तीसरी चीज वह नफ्स ही, नफ्स सा के साथ, कि हम सूरह फलक में भी पढ़ते हैं ना, मिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उकद, तो वो फूंके मारने वालियां, तो वो नफ्स वो वाली फूंक होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा थूक भी निकलता है, जिसको हम तुतकारना सा कहते हैं ना, थोड़ी सी थूक की छींटे भी आती हैं, तो वो भी करता है, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इस तरह से वो इंसान के पीछे पड़ा होता है। इसका फायदा फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला इससे बचा लेगा हमें इन तमाम चीजों से। अब देखें, एक तो इसमें हमें क्या पता चला कि हमने हिफाजत पकड़ ली, हमने बचाव के लिए शैतान के वसवास से इसको पढ़ना है। दूसरे, जब हम कुरान करीम शुरू करने लगते हैं, जब भी पढ़ें तो तब हम क्यों पढ़ते हैं, उलमा कहते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे कि नमाज के लिए वुजू है, इसी तरह तावुज है कुरान पाक पढ़ने के लिए, यानी मैं अपनी जुबान को पाक करती हूँ कुरान पढ़ने से पहले। पता नहीं इससे पहले हम क्या क्या बातें बोलते रहते हैं, लेकिन कुरान पाक इतना अजीम कलाम मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं अपनी जुबान को पाक कर लेती हूँ तावुज पढ़ के। ठीक है, अब क्या ये आपको मालूम है कि कब कब इसको पढ़ना चाहिए, कौन से मौके हैं इसको पढ़ने के, यानी कौन कौन सी जगह है इसको पढ़ने की? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कुरान करीम पढ़ने से पहले तावुज पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुरान पढ़ने से पहले, फिर दूसरे نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل کرتے تھے تو فرماتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی یہ رات کے عمل کی حفاظت ہے، اور حمز سے بھی اس کے اب وسوسے آئیں گے ظاہر ہے، جب رات کو آپ قیام اللیل کے لیے جو بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ یہ کلمات پڑھا کریں۔ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا آئے، السمیع اور العلیم، یہی دو کیوں آئے یہاں پہ؟ اللہ تو سننے والا ہے، کیونکہ میں تو اس کے وسواس نہیں سن سکتی، مجھے تو دل کے اندر بس ایسے خیالات آتے ہیں، تو ہے جو اس کے وسواس سن سکتا ہے، اور علیم تو جانتا ہے، اللہ میں بچنا چاہتی ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے۔ اچھا، پھر من الشیطان الرجیم، شیطان، رجیم سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ دشمن آپ کو رات میں بھی نہیں چھوڑے گا کہ رات میں بھی آ کے وسواس ڈالے گا، اس لیے اس وقت بھی آپ نے یہ پڑھنا۔ اچھا، پھر اسی طرح جب غصہ تیز ہو تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا جائے، کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے، طرف پتہ ہے نا، غصے میں انسان کتنے برے کام کر لیتا ہے، کتنی بری باتیں بول دیتا ہے، تو اس لیے اس دشمن سے بچنے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہ انسان جس وقت باتھ روم میں داخل ہونے لگے تب بھی یہ کلمات پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بھی تعوض کے یہ بھی کلمات ہیں، کیونکہ جو ٹوائلٹس ہیں وہ گندی جگہیں ہیں، اور یہ شیاطین کو گندگیاں پسند ہیں، نجس جگہیں پسند ہیں، تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، انسان وہاں پہ جب جائے تو یہ کلمات پڑھ کے جائے۔ پھر جب کبھی خوف آپ کو آئے، ڈر لگے، تو بھی آپ تعوذ کی کلمات پڑھیں، ایک کلمہ ان میں یہ بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گا۔ جب نماز میں وسوسے آئیں آپ کو، اور ہم سب کو آتے ہیں، تو پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھتکار دیں، ایسے ایسے ہلکا ہلکا، جس میں جیسے تھوک بھی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ بائیں طرف تھتکاریں۔ اسی طرح یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں، کسی ویرانے پہ جائیں، تب بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ویران جگہوں پہ کیا یہ چیزیں ہیں، ان کا بسیرا ویران جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں برائی کا خیال آئے تو فوراً آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو پتا نا، جیسے آپ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اچھے بھلے بیٹھے میں، ایک دم کوئی ایسا برائی کا خیال اندر آنے لگتا ہے، خود بخود پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ڈال رہا ہے کہ یہ کر لو آپ۔ اس طرح بغیر کسی وجہ کے بھی آپ پڑھتے رہے، ضروری نہیں کوئی وجہ ہی ہو تو پھر آپ نے پڑھنا، کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، لیکن کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو بہکاتا ہے، اور اگر ہم یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ دیکھیں شیطان ایسا خبیث ہے، بعض دفعہ ساری زندگی نیکیاں کراتا ہے، اور آخر میں آ کے انسان سے ایسا کوئی گناہ کروا دیتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو۔ موت کے وقت کے فتنے اس کو کہتے ہیں، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا انسان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، جب آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں آپ کبھی، تو ہمارے جو اسلاف تھے نا، بزرگ ہمارے سلف صالحین تھے، وہ جتنا خاتمے کے تصور سے روتے تھے، کسی اور چیز سے اتنا نہیں روتے تھے، اتنا ان کو رلاتی تھی کہ خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو جائے، کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہان میں جھانکنا ہے نا، یہ بہت شدید منظر ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی فرمبرداری کر رہا ہے، مگر کس وقت وہ پلٹ جائے، کہیں نافرمانی آ جائے، کہیں ایسا کوئی خیال، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسے بول منہ سے وہ ادا کر دے کہ زندگی کے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ شیطان کرواتا ہے، اور یہی اس کی کوشش ہوتی ہے، کہتا کر لے نیکی، کوئی بات نہیں، آخر میں ایسا اس کو چکر دوں گا، ساری نیکی برباد کرا دوں گا۔ انسان خوش ہوتا رہتا ہے، میں تو بڑی نیکیاں کر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری نیکیاں برباد ہو گئی۔ इसीलिए एक बड़ी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है ना, तो उसको नेक अमल की तौफीक दे देता है, और जब वो नेक अमल करता है तो उसकी रूह कब्ज कर लेता है। यानी अल्लाह ताला उसके साथ खैर का इरादा फरमाता है ना, तो नेकियों के अंदर ही उसकी रूह कब्ज कर लेता है, ताकि नेक अमल करते करते वो दुनिया से जाए, उसका खात्मा नेकी पर हो जाए, और वो किसी बुराई में पड़े बगैर नेकी करते करते यानी अपने पीक टाइम में अल्लाह के पास चला जाए। हर एक को शौक होता है ना, अपने लोग बड़े बड़े जो लोग रिटायर होते हैं वो किस वक्त रिटायरमेंट लेते हैं, आपने बड़े खिलाड़ियों को देखा होगा, जिस वक्त वो कोई वर्ल्ड कप जीतते हैं, जब कोई बड़ी चैंपियन बनते हैं, तो वो कहते हैं अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, वो अपने पीक टाइम पे होना चाहते हैं। अल्लाह के पास जाना कितनी बड़ी बात है, इस दुनिया से रिटायर होना, इंसान हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं अपने पीक टाइम पे जाऊं, जब मैं नेकी में बहुत आगे हूं। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल करे कि अल्लाह किसी के साथ इरादा करता है जब भलाई का, नेकी की तौफीक देते हैं, उसी नेकी के अंदर उसकी मौत वाके कर देता है, उसकी रूह कब्ज कर देता है, सुभान अल्लाह। तो ये है तावुज। अब तावुज में वैसे तो शैतान के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं, हम उनमें जा नहीं सकते, आपको पता है तिलबिसे इबलीस एक किताब है, उसमें बहुत सारे इसके टैक्टिक्स लिखे हुए कि कैसे कैसे ये चाले चलता है, कैसे कैसे इसके मकर होते हैं, उसमें जाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको चंद एक बताना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो तकरीबन हर एक के साथ होते हैं। एक उसका टैक्टिक ये है, चाल ये है, मकर ये है कि इंसान को भुला देता है, भूल जो है ना, कि नमाज पढ़नी भूल गई, क्लास का टाइम ही भूल गया, क्लास में आना ही भूल गया, ग्रुप में जाना ही भूल गया, ज़कात देनी भूल गई, और मैंने नफली रोजा रखना था वो रोजा का ही भुला दिया, वो सदका करना था भूल ही गई। ये सब क्या है, ये भूल जो है ना, ये नेकी से जो भूल जाना है वो शैतान का काम होता है। नंबर टू, लेजी कर देता है इंसान को, सुस्ती, ये जो हम कहते हैं ना सुस्ती आ रही है, नींद बहुत आ रही है, ये जो नींद का आना है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान की तरफ से, यानी हर वक्त जो इंसान सोया सोया पे स्लीपी सा रहे ना, ये भी शैतान की तरफ से होता है। डायरेक्ट नींद के टाइम पे तो नींद आनी ही है, लेकिन बस हर वक्त जू ही आप कुरान पढ़ने बैठे उसी वक्त खर्राटे लेने शुरू हो गए, उसी वक्त नींद आने शुरू हो गई, तो ये शैतान की तरफ से होती है। अब आप कहेंगे इसका फिर इलाज क्या, तो फिर अब अभी जो बताया था तावुज, अल्लाह की पनाह ले लें। अच्छा नंबर थ्री, ये जो हद से ज्यादा खौफ ज़दा करना है, ये भी शैतान की तरफ से होता है, कि जब हम टू मच सोचने लगते हैं फ्यूचर के बारे में, या अपने पास्ट के बारे में, हाय ये क्यों हो गया, या हाँ ये ऐसा ना हो जाए कहीं, और फिर इतना सोचते हैं, इतनी वो फिक्र अपने पर तारी कर लेते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये भी शैतान की तरफ से होता है। शैतान ये ख्यालात लाके इंसान को डिप्रेस कर देता है, वो उम्मीद छोड़ देता है, वो मायूस हो जाता है, वो मरीज बन जाता है, ये याद रखें शैतान की तरफ से है, शैतान की तरफ से हमेशा ये याद रखें। तो ऐसे ख्यालात अव्वल तो आने के लिए अपने आप को इतना फारिगी ना रखें कि आप बैठे हुए और घंटों गुजर गए और आप उठ ही नहीं रहे, और अभी तक आप ख्यालों की दुनिया से ही नहीं निकल रहे, फिर उठ के कहते मुझे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन होने क्यों दिया, इतना अपने आप को आप मसरूफ करें कि आपको मौका ना मिले कि आप बैठ के इस तरह के ख्यालात सोचें। बहुत बुरा तो करोड़ों चीजें बुरी हो सकती हैं, अगर हर चीज को अपने ऊपर तारी कर लेना, कोई वीडियो देखी, कोई चीज सुन ली, कोई खबर आ गई, तो उसको आप सोच लेना कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, हाँ ये कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये चीजें ना शैतान लाता है, इसलिए बुरी चीजों को ऐसे जहन पे सवार ना होने दें, और ना ही टू मच ऐसे ख्यालात सोचें, ये वसवास है शैतान के। ठीक है, तो जब कभी ये आने लगे तब भी क्या करना है आपने, वो बच्चे की मिसाल को सोच ले, वो बच्चे ने बाप को सामने देखा कैसे उसे चिमट गया ना, कैसे उसकी पनाह में चला गया, बाप ने बाहों में ले लिया, तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह अपनी पनाह में ले लेगा अगर हम भी अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे। अल्लाह ताला तो फरमाता है फिरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। हमारे पास तो और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम अल्लाह की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि शैतान इतना बड़ा दुश्मन हमारे पीछे लगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको दुश्मन समझो। बाज लोग कहते नहीं कोई शैतान वैतान कोई चीज नहीं है, ऐसे ही बस बात नहीं। कुरान करीम में इसकी दलील है कि शैतान है, उसके चेले चांटे हैं, उसके लश्कर हैं, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने वादा किया हुआ मैं जहन्नुम में लेके जाऊंगा। अब ये भी वसवसा शैतान डाल देता है ना कि भाई कोई शैतान वैतान नहीं, हमारा अपना ही है ये। नहीं, शैतान है, लेकिन वो गन पॉइंट पे हमसे कुछ नहीं करा सकता, उसके अंदर कोई कुव्वत नहीं है कि हमसे कुछ करवाए। हाँ, वसवास जरूर डालता है, और यही उसके वसवास हैं जिनके जरिए वो हमारे साथ खेलता है, हमें बर्बाद कर देता है। जो इंसान देखें डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा, क्या कर सकेगा बताएं? कुछ अपने दुनिया में कोई बामकसद काम या कोई पॉजिटिव चीज कर सकता है? वो तो बेचारा अपनी हेल्प नहीं कर सकता, किसी और की क्या हेल्प करे, वो अपनी आखरत क्या बनाएगा? तो इसलिए इससे निकलने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवास होते हैं जो तंग करते रहते हैं। तो अल्लाह की पनाह में आ जाए। ये मैंने आपको कई तरह के कलिमात बताए, ये सब हदीस से साबित है, इनमें से कोई भी कलिमात आप पढ़ के अल्लाह की पनाह में आ सकते। फिर इसी तरह टालते रहना, काम को डिले करना, ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा होता है। ये जो हम कहते हैं ना अभी नहीं कल कर लूंगी, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, वो कल आ गया तो फिर कल आ गया तो फिर कल, वो सारी जिंदगी से वो कल ही नहीं आके दे रहा जिसके हम मंसूबे बनाते रहते। तो वो जो कल कल है ना, ये शैतान का हरबा है। क्योंकि इंसान तो इरादा करता है मैं कर लेती हूं, लेकिन अब किस तरह इसको हटाए इससे? तो कल, जैसे हमने जब बच्चों को बहलाना होता है तो फिर वो हमें कहते हैं, कुछ जिद करते हैं, अच्छा नहीं बेटा ले दूंगी, कल ले दूंगी, चलो कल चलेंगे, इस तरह करके हम करते हैं ना उनको। तो शैतान भी इस तरह ही हमसे खेलता है और हमें समझ ही नहीं आती, हम भी पागल बन जाते हैं। कहते नहीं अभी अभी क्या करूं, अभी तो मेरे बड़े काम है, अभी क्या करूं, मेरी तो बड़ी जिम्मेदारियां है। भाई नेकी की तरफ आने में ही क्या ये सारी जिम्मेदारियां याद आती हैं? अभी क्या करूं, अभी बच्चे छोटे हैं। ओ भाई बच्चे छोटे हैं तो वो तो दावतों के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, शॉपिंग के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, मिलने मिलाने के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, वेकेशन पे सैरों पे जाने के लिए भी तो बच्चे छोटे हैं, किसी चीज में ये ख्याल नहीं आता कि बच्चे छोटे हैं। हाँ, जब कुरान की तरफ बुलाया जाए तो फिर क्यों फौरन जुबान से निकलता है नहीं अभी बच्चे छोटे? तो बच्चे क्या रुकावट बन के खड़े हो गए कुरान के रास्ते में? बच्चे कहते हैं कुरान ना पढ़ो, कुरान ना सीखना माँ, ये कहते नहीं समझे कि ये शैतान कुरान से दूरी कराना चाहता है। इस कुरान से, क्योंकि वो इतने कुरान के बैर पड़ा हुआ है, वो इसलिए कि उसको पता है ये हिदायत का रास्ता है, ये तो हिदायत पा गई तो इसकी तो जिंदगी बदल जाएगी, ये तो फलाह पा जाएगी, कामयाबी पा जाएगी, ये तो अल्लाह से करीब हो जाएगी। कहां उसको ये बात गवारा है? और हम कैसे बुद्धू हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है, अदुव्वु मुबीन है, वो दुश्मन है खुला, फिर भी हम उसके ट्रैप में आते चले जाते। तो वो ऐसे फांस लेता है, और वो बच्चे तो कभी बड़े होके ही नहीं देते, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर अब बड़े हो गए, अब भी जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो रही, वो तो मरते दम तक करने नहीं देगा। अब बड़े बूढ़ों से पूछ लें वो भी कहते हैं जी जिम्मेदारियां हमारी इतनी। अभी पिछले दिनों किसी से बात हुई तो वो कहने लगी, मैंने उनसे कहा कि आप तो आप फारिगुल बाल हैं, तो वो कहने लगी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो और तरह की जिम्मेदारियां हैं इनकी, आप बच्चों के बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारियां। तो वो कहने लगी आप लोगों को बताएं इस बात से, ये छोटे बच्चे वाले फारिग हैं, हम बड़े बच्चों वाले ज्यादा मसरूफ हो गए, अब हमारी जिस्मानी भी फिकरात है, वो जहनी भी फिकरात है, जहनी भी मुशक्कत है, जिस्मानी भी मुशक्कत है, क्योंकि जहनी फिकरात है, जिस्मानी मुशक्कत तो फिर भी खत्म नहीं होती, अब उनके बच्चों की खिदमत है। तो देखें शैतान तो कभी नहीं कराने देगा, हम जिन हालात में भी हैं, जहां पे भी हैं, हम वहीं पे पहला कदम उठा देंगे, हम नहीं उसकी बात को सुनेंगे। तो ये उसका बहुत बड़ा ट्रैप है, और हदीस में आता है टाल मटोल शैतान की तरफ से है। फिर आप ये भी देखें कि ये जो मैंने आपको अभी बताया कि अचानक से बैठे बैठे ख्यालात आ जाते हैं, कोई इस तरह बुराई की, ये कर लूं, ये कह दूं, ऐसे किसी को कॉल करके कहूं उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैंने भी नहीं अब उसको माफ करना, ये भी सारे बैठे बैठे जो जेहन के अंदर बातें आ रही थी ना, ये भी शैतान की तरफ से होती है, अनलेस के कोई खैर की बात जेहन में आए। ठीक है, तो अब कितनी ज्यादा जरूरत है हमें तावुज़ की, बस अब फिर ये लेक्चर जब जब याद आए फौरन बैठे हैं, खड़े हैं, कोई ऐसा बुरा ख्याल आ रहा है, तो फौरन तावुज़ पढ़ने। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बसमल्ला की तरफ या तस्मिया की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी बी साथ, बी का भी माना है अरबी में, ये जो हर्फ है ना बी, इसके भी एक माना नहीं है, कई माने हैं, सुभान अल्लाह। तो ये भी कलमा हम कुराने पाक में आप देखते हैं हर सूरत से पहले लिखा हुआ, तो ये भी कलमा हम पढ़ते हैं जब हम कुरान खोलते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल फरमाई तो क्या फरमाया, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, इक़रा पढ़ किसके नाम के साथ, अपने रब के नाम के साथ पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। तो इसकी हुक्म की तामील में हम जब भी पढ़ेंगे तो हम अल्लाह के नाम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं बी बी को लें तो सात, सात का ज्यादातर हम तर्जुमा करते हैं, मगर मैं आपको और भी माने अभी बताती हूँ, पहले एक बात को समझे, बहुत ही खूबसूरत इसमें मीनिंग्स है, तो आज इसकी ब्यूटी समझे बसमल्ला की, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, तो आज ही आपने ये समझ लेना है। और आपका होमवर्क भी साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको मैंने कहा था ना छोटी नोटबुक या डायरी आपने अलग से एक रखनी है, उसमें लिखे अपना होमवर्क कि ये तावुज़ और बसमला की हमने प्रैक्टिस करनी है, और हमने इसको इसका जो मीनिंग है, इसके जो जो हमने इसके फजाइल पढ़े हैं आज, जो इसका मकसद है, ये हमने किसी ना किसी और को सिखाना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, तो इसलिए जब होमवर्क मिल जाता है ना ऐसा कि किसी और को भी समझाना है सिखाना है, तो फिर इंसान गौर से सुनता है, क्योंकि अब आपको सिर्फ अपने लिए नहीं समझना, किसी और को समझाने के लिए भी समझना। ठीक है, अच्छा अब बी और इसम ये दो मिल गए तो बिस्मी बन गया। इसम का तो मतलब आपको पता है ना, इसम किसको कहते हैं, नाम को, बी साथ इसम नाम, अब मर्ज हो गए तो बिस्मी हो गया, बिस्मी और फिर बिस्मिल्ला अल्लाह के नाम के साथ। अच्छा अल्लाह के नाम के साथ क्या क्या, अल्लाह के नाम के साथ यानी कुछ चीज तो मिसिंग है इसका मतलब, कोई मतलब क्या क्या चीज, अल्लाह के नाम के साथ मैं खाती हूँ, पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, क्या अल्लाह के नाम के साथ, मसलन मैं आपको कहूं गाड़ी की चाबी के साथ, तो आप कहेंगे क्या, मतलब इट्स इनकम्प्लीट ना, समथिंग इज मिसिंग, गाड़ी की चाबी के साथ मैं जाती हूँ, गाड़ी की चाबी के साथ मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी की चाबी के साथ मैं घर से निकलती हूँ, गाड़ी की चाबी के साथ मैं मार्केट गई, कुछ कुछ तो बोलू ना, कोई फेल तो इसके साथ होना चाहिए ना, फेल समझते हैं ना वर्ब, यानी कोई काम तो इसके साथ लगा होना चाहिए, वरना आप सिर्फ मैं गाड़ी की चाबी के साथ तो क्या। ठीक है, आपको पता है बिस्मिल्लाह के अंदर कोई फेल अभी तक नहीं आया, आगे तो देखें रहमान और रहीम है, तो क्या अल्लाह के नाम के साथ क्या, ये फेल यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये क्यों मिसिंग है, क्या वजह है इसकी मिसिंग होने की, यानी यहाँ पे ये नहीं कहा गया अल्लाह के नाम के साथ मैं कुरान शुरू कर रही हूँ, अल्लाह के नाम के साथ मैं कुरान पढ़ रही हूँ, अल्लाह के नाम के साथ मैं लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ये मिसिंग है, गौर से सुने इस बात को, ताकि ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आए, यानी जो भी मैं कर रही हूं, तो मैंने अगर ये कह दिया ना बिस्मिल्लाह तो आगे फेल महजूफ है, यानी फेल यहाँ पे मिसिंग है, यानी जो भी मैं कर रही हूंगी वो फेल यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए कोई स्पेसिफिक फेल नहीं यहाँ पे डाला गया, वरना अगर आ जाता अल्लाह के नाम के साथ, मैं पढ़ रही हूं तो सिर्फ पढ़ने के लिए ये बसमला इस्तेमाल हो सकता था, आप पढ़ सकते थे, बाकी किसी चीज के लिए भी नहीं पढ़ सकते थे। मसलन खाना खाने वक्त आपने ये तो नहीं कहना था बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रही हूं, ना आप ये तो नहीं कह सकते थे बिस्मिल्लाह है अक्तुब, बिस्मिल्लाह मैं लिख रही हूं, बिस्मिल्लाह ही अकरा, बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रही हूं, आप ये तो नहीं कह सकते थे। फिर खाना खाते हुए, दरवाजा खोलते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, आपको स्पेसिफिक फिर हो जाना था। तो यहाँ हिकमत है इसमें कि अल्लाह ताला ने फेल यहाँ पे नहीं लाए, कि अल्लाह ताला ने इसको ओपन छोड़ दिया कि जो भी एक्शन कोई कर रहा होगा उसके मुताबिक ये बिस्मिल्लाह होगी, यानी मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके साथ जब बिस्मिल्लाह कह देती हूँ तो उस काम के लिए वो बिस्मिल्लाह बन जाती है। तो फिर अब मैं जिंदगी के हर शोबे के लिए इसको पढ़ सकती हूँ, यानी मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, लेट रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुकिंग शुरू कर दी, बर्तन धो रही हूँ, सफाई करने लगी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से लेके किसी से चीज पकड़ रही हूँ, दरवाजा खोल रही हूँ, गाड़ी में बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, तो मैं फिर किसी काम के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, किसी काम में भी ये पढ़ सकती हूँ। और जो फेल है, एक और भी हिकमत बताती हूँ, बिस्मिल्लाह के बाद आए के पहले ये आना चाहिए मैं पढ़ रही हूं अल्लाह के नाम के साथ, या बिस्मिल्लाह ही अक्तुब, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ मैं लिख रही हूं, ऐसे होना चाहिए। तो उलमा कहते हैं फेल बाद में आएगा, काम हमेशा बाद में रखा जाएगा, अल्लाह का नाम पहले आएगा, ये नहीं कि मैं शुरू कर रही हूं अल्लाह के नाम के साथ, नहीं, अल्लाह के नाम के साथ फिर कहें मैं शुरू करती हूँ, ये ताजीम है अल्लाह के नाम की। ठीक है, अच्छा, अब बा के माने मैंने आपको कहा कि मैं आपको और भी बताती हूँ, बा के तीन माने यहाँ पे तो जरूर आप लिख लें, एक और भी चौथा भी बता दूंगी लेकिन तीन आप लिख लें। एक बा है जो मैंने आपको बताया मुसाहिबत का, मुसाहिबत क्या मतलब, मुसाहिबत जिसको कहते हैं साहब से, सहाबा भी इसी से होता है ना, मीम स्वाद अलिफ हा बा ता, मुसाहिबत का। तो मुसाहिबत में क्या होता है, साथ, सहाबी भी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, राइट, तो यानी साथ के लिए है ये बा, साथ के लिए, यानी अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह तेरे नाम के साथ, यानी अल्लाह तला को आप याद करती हैं, आपने कह दिया कि अल्लाह तला में ये अहम काम करने जा रही हूं या ये कोई भी काम करने जा रही हूं, अल्लाह साथ तेरा नाम ले रहे हैं, साथ तेरा जिक्र कर रही हूं, तेरे ख्याल के साथ मैं ये काम कर रही हूं, ठीक है, तेरी याद इसमें साथ है, चाहे वो दीन का काम हो चाहे दुनिया का काम हो, मगर हमें अल्लाह ताला का साथ चाहिए ना, अल्लाह तेरे साथ, फिजिकली नहीं, मतलब है कि अल्लाह मेरे साथ हो जाए बस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर इस्तेआनत का मानी है, इस्तेआनत इयाक नस्तईन पढ़ते हैं ना, क्या मतलब होता है, इयाक नस्तईन आ रहा है ना इसमें, तो इस्तेआनत मतलब क्या, मदद के लिए, यानी जब आप बी कहते हैं तो अल्लाह तेरी मदद के साथ, कि अल्लाह तेरे बगैर ये काम नहीं मैं कर सकती, जितने भी असबाब में मेरे पास गाड़ी की चाबी भी है, गाड़ी भी है, मुझे गाड़ी चलानी भी आती है, लेकिन अल्लाह ये चलेगी नहीं जब तक तेरी मदद ना हो, अल्लाह मैं पहुंच नहीं सकती जब तक तेरी मदद ना हो, अल्लाह ये काम पूरा नहीं होगा जब तक तू ना मदद करे, मैं खाना पकाने लगी बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरी मदद के साथ, अल्लाह मेरा खाना पक ही नहीं सकता जब तक तू ना मदद करे, ठीक है। तो यानी ये काम के लिए अल्लाह ताला की मदद को शामिल हाल करने का एक तरीका है कि आप बिस्मिल्लाह जब कहते हैं तो अल्लाह ताला को मदद के लिए आपने एक तरह से पुकार लिया। तीसरी चीज तबर्रुक के लिए, यानी बरकत के लिए, बरकत क्या होती है, खैर, हम कहते हैं ना बरकत चाहते हैं हम हर चीज में, हम कहते हैं मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरे इस काम में बरकत हो जाए, तो इस बरकत के लिए भी आप ये कलिमा पढ़ते हैं, ये बी का माना बरकत भी है, अल्लाह तेरे नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूं, या तेरे नाम की बरकत से मैं लेटती हूँ, तेरे नाम की बरकत से मैं खाती हूँ, तेरे नाम की बरकत से मैं चलती हूँ, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप बरकत चाहते हैं। बरकत खैर कसीर को कहते हैं, बहुत सारा खैर, बहुत ज्यादा खैर मुझे मिल जाए, ना खत्म होने वाली खैर। तो हर चीज में हमें खैर चाहिए ना। बजाहिर हम, हो सकता है कोई काम नहीं हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन अल्लाह इसके अंदर खैर डाल देना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह से ना शुरू किया जाए ना, वो काम अधूरा होता है, जड़ कटा होता है। ठीक है, तो इसी तरह उलमा कहते हैं अलबाउ लिल कबूल, बा कबूल के लिए भी है। वो होता है इस बा के तो बड़े बड़े तर्जुमे किए गए हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी माने हैं ये सब मुराद हो गए जब आपने ये बिस्मिल्लाह पढ़ ली। तो बिस्मिल्लाह कोई रस्मी कलिमा नहीं है, ये बहुत बड़ा माना अपने अंदर रखता है। तो कबूल के लिए मतलब अल्लाह ये मेरा काम कबूल भी हो जाए। अब चाहे वो कोई नेकी का काम है, चाहे वो कोई दुनिया का काम है, अपने बच्चों को आप देख रही हैं, आप घर की सफाई कर रही हैं, अल्लाह कबूल कर लेना इसको, इसमें भी राजी हो जाना मेरे से, यानी मैं तेरी खातिर तेरा नाम जो अंदर ले लिया, तुझे तू राजी हो जाना इससे, तू कबूल कर लेना इस काम को मेरे हक में। तो आप खाना बना रही हैं, आप कुछ बर्तन धो रही हैं, आप अपने घर वालों के लिए एक सर्विस दे रही हैं, खिदमत कर रही हैं उनकी, आप अपनी जिम्मेदारी एक पूरी कर रही हैं, हकूक उनके अदा कर रही हैं, तो वो भी बिस्मिल्लाह के साथ कि अल्लाह इनको भी नेकियों में कबूल कर लेना, इस पे भी राजी हो जाना, तो कितनी बड़ी बात है बिस्मिल्लाह। हाँ बताएं, अब आप मुझे मानते हैं आप इस बात को? तो कब कब पढ़ें फिर इसको? कुरान पाक पढ़ने से पहले तो पढ़ना ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम लेके ही अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ा जाए। फिर जब कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए थे तो फिर भी बिस्मिल्लाह ही मजरेहा व मुरसाहा पढ़ा था, तो आप भी सवारी में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े। खत लिखते वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, खत में भी सूरह नमल में आता है कि जब खत लिखा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह के साथ लिखा था खत। तो खत लिखते वक्त, किसी के साथ खतो किताबत करते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर इसी तरह जब मियां बीवी का ताल्लुक अपना करें तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े। और वजह क्या है, उसके अंदर भी ये पता हमें चलता है कि शैतान इसके अंदर भी आने की कोशिश करता है, तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मिम्मा रज़क़तना, तो ये पढ़ें ताकि शैतान इसमें शामिल ना हो। और वो अगर इस अमल से कोई औलाद पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसको पैदा होते वक्त शैतान के हमले से महफूज रखता है। ठीक है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते थे तो बिस्मिल्लाह से उसका आगाज करते थे, बिस्मिल्लाह यरकीका मिन कुल्ली शैइन युसीका, आपने पढ़ा होगा शिफा की दुआओं में। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह घर से निकलना है या घर में दाखिल होना है बिस्मिल्लाह के साथ। घर से निकलना है तो निकलने की आपको पता है ना दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान भी फिर हमला नहीं कर सकता। जब आप ये दुआ कह के आप घर से निकलते हैं तो शैतान कहता है अब मेरा इसके ऊपर हमला नहीं होगा, और घर में दाखिल भी हो तो बिस्मिल्लाह कह के दाखिल हो, वरना शैतान साथ दाखिल हो जाता है। और वो कहता है कि मुझे तो रहने की जगह मिल गई। जब खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। और इसी तरह जब अगर इंसान को खाते वक्त, शुरू करते वक्त नहीं याद रहा बिस्मिल्लाह कहना, तो फिर बिस्मिल्लाह ही अव्वल हो आखिर हो, ये दरमियान में भी कह सकते हैं। वुजू करते वक्त जब इंसान वुजू करे तो बिस्मिल्लाह के बगैर वुजू ना शुरू करे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करके वुजू करना है, ये भी हदीस में आता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरवाजा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, यानी जब हम रात को दरवाजे बंद करते हैं ना, ये हमारे होमवर्क का हिस्सा है। आज हमने दरवाजे जब लॉक करने हैं, चाहे कमरे का दरवाजा है चाहे घर का दरवाजा, एक दफा रात को देखते हैं आप सोने जाने से पहले के सब लॉक्स हैं, या दिन में भी किसी को रुखसत करते हैं तो दरवाजा बंद करते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। चिराग गुल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, यानी हम तो लाइट्स ऑफ करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। बर्तन ढांकते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। इसी तरह मश का मुंह बंद करते वक्त, यानी मश्क होती थी ना उस वक्त लेदर बैग्स होते थे, तो उनका मुंह बंद कर देते थे तो बिस्मिल्ला पढ़ो। यानी जैसे आप पानी की बोतल है उसको बंद कर रहे हैं, दूध की बोतल है उसको बंद कर रहे हैं। और फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स अमले तजवज के वक्त कहे बिस्मिल्ला है अल्लाह हमको शैतान से महफूज रख, और जो औलाद हमको ता करे उसको भी शैतान से महफूज रख, तो अगर इस अमल के नतीजे में औलाद मुकद्दर की जाएगी तो उसको भी अल्लाह ताला शैतान के जरर से महफूज रखेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अबी सलमा से फरमाया बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। और आपने फरमाया हर खाने को हलाल कर लेता है शैतान सिवाय उस खाने के जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, यानी हर खाने में शामिल हो जाता है सिवाय जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। ठीक है। फिर इसी तरह एक सहाबी थे हजरत उस्मान बिन अबुल आस, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे जिस्म में बड़ा दर्द रहता है, तो आपने फरमाया 3 बार बिस्मिल्लाह करो कहो और फिर 7 दफा करो कहो आऊज़ु बि इज्जतिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगी जो भी किताबें हैं इसकी दुआओं की उनमें मिल जाएंगी। इसी तरह जानवर कोई ज़िबा करे तो वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी फेरे। रात को सोते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ के सोना चाहिए। इसी तरह मैयत को कब्र में उतारते वक्त बिस्मिल्लाह वाला मिल्लतिल्लाह मिल्लति रसूलिल्लाह इसको कह के मैयत को कब्र में उतारा जाए। फिर आप देखें बिस्मिल्लाह का एक कलमा तो आप हर किस्म के शर से बचने के लिए भी सुबह शाम की अपनी दुआओं में शामिल रखे, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वा हुवस समीउल अलीम। ये आप सुबह शाम की दुआओं में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ये बड़ी जामे दुआ है। देखिए ये भी अल्लाह के नाम के साथ है जिसके नाम के साथ कोई चीज आसमान और जमीन की नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जैसे तावुज हमारी जिंदगी के अंदर शामिल होना चाहिए इसी तरह बसमला भी शामिल होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको बिस्मी और अल्लाह अल्लाह ताला का नाम आया इसका माना बताना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अल्लाह ताला का नाम जो यहाँ पे आया है तो अल्लाह क्यों आया है? और ये अल्लाह ताला का नाम क्या है, इसका क्या माना है, क्या माना है अल्लाह अल्लाह आज तक सुनते रहे कितनी कितनी एजेस हो गई सबकी, अल्लाह का माना क्या है? एडवांस वाले लोग बताएं, एडवांस तालीमुल कुरान वाले लिखें इसके ऊपर, आप अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पे लिखें अल्लाह का माना। देखें अल्लाह ताला का ये जो नाम है ना अल्लाह, ये सबसे ज्यादा कुरान करीम में आया 350,000 दफा 3,500 times आया ये नाम। ठीक है। वो अल्लाह का जो लुगवी माना है, जी काफी सही आप लोग बता रहे हैं कि ये इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, तो उलमा इसके बारे में बताते हैं कि इसका माना एक इसका माना अता करना। अल्लाह ताला को अल्लाह इसलिए कहते कि वो अता करता है, बल्कि सिर्फ वो ही अता करता है और हर चीज अता करता है। अता यानी जिसको जो कुछ भी मिला हुआ है वो अल्लाह ही का दिया हुआ ना, उसकी अता है। तो एक ये माना। नंबर 2 माना हैरान होना, हैरान होना। ठीक है। यानी जितने भी अकल वाले हैं दुनिया में, जितने भी अपने आप को बहुत बहुत समझदार अकलमंद और बड़े वो कहें, वो जितना अल्लाह ताला की शान में गौर व फिक्र करेंगे, उसकी अजमत में, उसकी कुदरत में, वो हैरान होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला की जो मखलूकात हैं वो ही हमें हैरान कर देती हैं, तो अल्लाह की जात क्या होगी। उसके अहकामात को सोचें, उसकी हिकमतों को सोचें, उसके जो भी मखलूकात हैं उनको देखें, उसकी कायनात की वसत को सोचें, तो आप हैरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह जो है वो जिससे कोई हैरान हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर सकून देना, ये भी अल्लाह के माना है, सकून देने वाला। अल्लाह, इलाह से अली है, यली हूं, इससे ये निकला है ना, तो उसके मैं माने आपको बयान कर रही हूं। तो दिलों का सुकून उसकी याद से है, उसके हुक्मों पे चल के है, चैन और सुकून के खजाने उसके कब्जे में है। अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है सुकून उतार देता है, और जितना चाहता है वो अता करता है, कोई और सुकून दे नहीं सकता। ठीक ना, आप खुद देखें कि इब्राहिम अलैहि सलाम भड़कती भी आग में है और सुकून से बैठे हुए, और बादशाह अपने बड़े बड़े महलों के अंदर और आसाइशों के अंदर होते हैं, बेसकून होते हैं। तो इसका मतलब सुकून यहां से आप कहीं चीजों से ले नहीं सकते, कहीं से खरीद नहीं सकते, कोई आपको ला के नहीं दे सकता, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। फिर इसका चौथा माना, मल जा, जिसकी पनाह ली जाए, ठीक है। यानी दुनिया के गमों, दुखों, परेशानियों, उलझनों में जिसके पास जाके पनाह मिल जाए, घबराए हुए दिलों को, परेशान दिलों को जो पनाह देता है, घबराहट में जो पनाह देता है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि अल्लाह मलजा है, पनाह देने वाला है? फिर महबूब, वो जिसके साथ शदीद मोहब्बत की जाए, यानी अल्लाह ताला के नाम का एक माना ये भी है कि जिस साथ शदीद मोहब्बत, शदीद ताल्लुक हो, ठीक है। और ये एक इस माने में भी आता है कि माँ जो अपने बेटे को, बच्चे को खो दे, तो उसमें जो वो मजनून हो जाती है, उसको भी कहते हैं, उस माँ को कहते हैं वल्लाह। यानी वो उसी से ये लफ्ज भी निकला है कि कोई अल्लाह वो है जिसके लिए यानी मखलूक उसकी मोहब्बत में, उसकी मोहब्बत में दीवानी हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह के माने महबूब के भी हैं, प्यारे के भी हैं। तो वो जो ताल्लुक माँ को अपनी औलाद से होता है ना, उस वो जो गम, जो ताल्लुक, जो मोहब्बत है, उससे ये लफ्ज निकला है। तो इसी से फिर उलमा कहते हैं अल्लाह ताला जो वो है जो मोहब्बत के लायक हस्ती है, जो महबूब हस्ती है, ठीक है। तो अब कितने माने आपको समझ आए? काफी माने समझ आए ना, जिसके जुदाई के सदमे में कोई मजनून हो जाता है, इसलिए माँ जिसका बच्चा उसे खो जाता है तो वो भी इसी तरह हो जाती मजनून से, और जिसकी जिंदगी में अल्लाह नहीं है वो भी ऐसे ही हो जाता, और इंसान अल्लाह से इतनी यानी मोहब्बत के लायक वो जात है, उसे वाकई वो महबूब जात है जिसे इतनी मोहब्बत की है। फिर आपको मैंने हैरान और शर्मसदर रह जाने की भी बात बताई कि अकलें हैरान रह जाती हैं उससे, अकलें दंग रह जाएं, एस्टोनिश्ड जिसको कहते हैं। फिर जिसकी तरफ हिफाजत और पनाह के लिए रुजू किया जाता है, अल्लाह की तरफ सभी रुजू करते हैं, सबको उसकी तरफ से हिफाजत चाहिए, पनाह चाहिए, वो मलजा है घबराहट में भी, दुश्मन से भी। फिर बुलंदी का माना भी है, तो जो अल्लाह पे ईमान रखता है अल्लाह उसको भी बुलंदी देता है, और अल्लाह खुद बुलंद है, ठीक है। और लास्ट वन आपको जो मैं बताना चाहती हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो तमाम जो उलमा इसके ऊपर मुत्तफिक हैं इस माने के ऊपर, और वो अली है या लहू, जिसकी इबादत की जाए, जो इस लायक हो कि उसकी इबादत हो, अल इलाह से ना, जो इस लायक है कि उसकी डिजर्व करता है इबादत, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ही इस लायक है इबादत की, लायक सिर्फ वो ही है, वो ही सिर्फ इस काबिल है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए? कैसे कह सकते हैं? कोई प्रूफ है इसका? हाँ, इसलिए कि हर कमाल सिफात सिर्फ और सिर्फ उसमें, ये जो अस्माए हुस्ना है ना, जितने आप 99 नेम्स पढ़ते हैं, इसके अलावा भी हैं, ये भी जो आप कुरान करीम के शुरू में बाज दफा लिखे होते हैं, या इसके कार्ड्स भी आपको मिल जाएंगे अस्माए हुस्ना के, ये अल्लाह ताला की सिफात है। ये सिफात जो हैं, ये कमाल की सिफात हैं, टॉप की। अब हम, अगर हमें पता ही नहीं है ये सिफात हैं क्या, कहती क्या है, तो हमें क्या पता चलेगा? अब लेकिन चलो इस बात को आज तो ये समझ लें कि ये सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में है और किसी में है ही नहीं। अच्छा, अब आप देखिए ना, एक हमें बात बता दी गई, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अच्छा, कुछ इसका आगे पीछे नहीं पता, बस एक जुमला रट लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट्स इट। उसके बाद इसीलिए बीच में शुभात आते हैं, शकूक आते हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं ये सही है कि नहीं, पता नहीं कितनी आजकल ये फितने हैं, इसलिए कि हम इल्म नहीं लेते, हमें पता ही नहीं है। हर चीज के पीछे देखें एक लॉजिक है, एक बात है, कोई इल्म है ना, वो इल्म पता नहीं है, तो बस ऐसे ही उसको रटा हुआ है। क्यों है अल्लाह सिर्फ इबादत के लायक? इसलिए कि तमाम कामिल सिफात सिर्फ और सिर्फ उसमें है और किसी में है ही नहीं। और वो कामिल सिफात कौन कौन सी है? जो उसके अस्माए हुस्ना है, जो उसने खुद बताए हैं अपने, वो सिर्फ उसमें। आप कोई मखलूक ले आए, जितनों की इबादत की जाती है, जितनों की भी इस दुनिया में कोई भी इबादत कर रहा, सबको लाके देखें इन अस्माए हुस्ना के ऊपर, उनको टेस्ट करें, उनमें से कोई उस पर पूरा नहीं उतरता, इनमें से कोई नहीं उन पर पूरा उतरता। और अस्माए हुस्ना की जो डेप्थ है ना, वो तो हम समझ ही नहीं सकते, हमारी तो अकलें उसे आजिज है। तो ये कामिल सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अंदर है, उसके अलावा किसी में नहीं। तो अल्लाह ताला का जो ये नाम है ना, यानी अल इलाह, कि अल्लाह इबादत के लायक है। क्यों इबादत के लायक है? क्योंकि उसके अंदर ये सारे अस्माए हुस्ना, ये सारी सिफात है उसके अंदर। इसका मतलब है, अब ये बहुत गौर से सुने, इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि अल्लाह इबादत के लायक है, तो क्यों? इसलिए कि वो हई है। वो इबादत के लायक क्यों है? इसलिए कि वो समी है। वो इबादत के लायक क्यों है? इसलिए कि वो अल कयूम है। वो इबादत के लायक क्यों है? इसलिए कि वो अल अलीम है। वो इबादत के लायक क्यों है? वो अल बसीर है। आप इस तरह लेते जाएं सारे नाम, वो इसलिए इबादत के लायक है अल्लाह के, वो इसलिए है इलाह, अल्लाह इलाह है, वो इबादत के लायक है, क्योंकि ये तमाम सिफात अल्लाह में है। तो अल्लाह ताला का ये जो नाम है, उसका जाती नाम है, और इस नाम के अंदर उसकी सारी सिफात जमा हो जाती हैं। तो सोचें कि ये नाम कितना अजीम नाम है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना, यानी तमाम अस्माए हुस्ना अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अल गफूर अल्लाह है, अल्लाह का नाम है अल गफूर। देखिए, अल्लाह ताला को अल गफूर आप कह सकते हैं, अल्लाह ताला को अल मुजीब आप कह सकते हैं, अल्लाह ताला को रहीम आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया अल गफूर को अल्लाह कह सकते हैं। ठीक है, उलट नहीं। जैसे आप कह सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसानों की एग्जाम्पल अल्लाह के लिए नहीं दी जा सकती, बस सिर्फ समझाने के लिए। जैद है वो सखी है, जैद है जो रहम दिल है, जैद है जो बहादुर है, तो असल उसका नाम जैद है, उसके बाद उसकी ये सारी सिफाती हैं चीजें। ठीक है, ये सारे सिफाती नाम है अल्लाह के, उसका असल नाम जो उसने अपनी जात का लिया वो अल्लाह है। तो अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला के इस नाम की एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह कैसा है। अल्लाह वो ऐसा है, अल्लाह वो ऐसा है, अल्लाह वो ऐसा है, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई, हई है, कयूम है, समी है, बसीर है, हकीम है, रजाक है, मुजीब है। तो ये सब सिफात उसमें समो गई अल्लाह नाम में। सही है ना बात? अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला का आगे ये दो सिफाती नाम आए, अर रहमान और अर रहीम। देख लें, अल्लाह ताला ने बसमला में अपना कोई और नाम नहीं रखा। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह कहार है, वो जब्बार है, वो समी है, वो बसीर है, वो कोई भी और। अल्लाह ताला अपना सिफाती नाम भी तो रख सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अपना जो ये कलिमा हमें सिखाया। और मैंने आपको बताया सूरह नमल में तो पूरा ये कलिमा मौजूद है कुरान करीम में, यानी 114 दफा ये कलिमा आता है, 114 सूरतें हैं, सिर्फ सूरह तौबा के शुरू के अंदर नहीं है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेकिन फिर वो सूरह नमल में आ गई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो 114 114 पूरे हो गए। तो ये कलमा इतनी दफा जब पढ़ना है तो क्या चीज है इस कलमे में, इसमें अल्लाह ताला के ये कोई ऐसे ही वो खास ही नाम होंगे, बहुत ही अहम ही नाम होंगे कि अल्लाह ताला ने और कोई नाम छोड़ के अल्लाह और उसके बाद अर रहमान और अर रहीम नाम लिए। देखें, इससे पता चलता है कि ये दो नाम भी कितने इंपॉर्टेंट है, और खासुल खास इसमें अल्लाह ताला का नाम अर रहमान, बेहद रहम करने वाला। हालांकि दोनों ही ये नाम जो है ना रहम से निकले, में दोनों में बहुत एग्जेजुरेशन है, यानी बहुत मुबालगा है इनके अंदर, बहुत ज्यादा का माना आता है इसमें, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है वो अभी इस पे आते हैं, लेकिन बेसिकली आप बात समझ लें कि रहम से ही दोनों लफ्ज निकले हैं। और रहम का मतलब क्या होता है, नरमी करना, किसी को फायदा देना अपनी, उससे किसी के ऊपर मेहरबानी करना, और उसकी वजह से उसको फायदा देना। तो जब हम कहते हैं अर रहमान, तो उलमा कहते हैं अल्लाह, जैसे अल्लाह ताला का नाम है इसी तरह अल्लाह के बाद अल्लाह ताला का एक और नाम है अर रहमान, जो भी किसी और का नाम नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह किसी और का नाम नहीं हो सकता, इसी तरह अर रहमान भी अल्लाह के बाद जो टॉप का नाम है वो अर रहमान। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, कुल इदउल्लाह अव इदउर्रहमान, अल्लाह कहो या रहमान कहो, एक ही बात है, उसी के लिए सारे अस्माए हुस्ना, यानी सारे अस्माए हुस्ना अल्लाह के लिए, या तुम रहमान भी कहो तो सारे अस्माए हुस्ना रहमान के लिए। ये है आयत का मतलब। तो ये इसका मतलब अल्लाह कह ले या रहमान, अर रहमान कह दे, एक ही है। इसी वजह से इंसानों के नाम रहमान नहीं रखने चाहिए, पता है आपको, अब्दुल रहमान रख दे ठीक है, लेकिन रहमान ना रखें। और किसी का नाम अब्दुल रहमान होता है तो रहमान साहब कहते हैं, ये भी सही नहीं है। अल्लाह ताला को जो महबूब है दो नाम है, वो दो नाम कौन से हैं जो अल्लाह के महबूब है, हदीस में आता है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इस कोर्स के अंदर आपको जितनी भी बातें बताई जाएंगी, या तो अहदीस से होंगी, या उलमा की बात होगी, मुफस्सिरीन की बात होगी, मुहद्दिसीन की बात होगी, कोई भी मेरी अपनी बात नहीं है कि मैं आपको अपने जहन से सोच सोच के बातें बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मगर मुश्किल हो जाता है ना कि मैं आपको हर वक्त बताऊं जी मैं फलां तफसीर से आपको बता रही हूँ, इस वक्त फलां तफसीर, इस वक्त हदीस का रेफरेंस ये, तो फिर मैं तो सारा वक्त रेफरेंस ही, क्योंकि मेरे पास तो ढेरों ढेर तफासीर हैं और उनमें से निचोड़ आप लोगों को आगे रखा जाता है। अब मुमकिन नहीं होता कि मैं हर एक चीज का नाम और पेज नंबर और ये सब आपको बताऊं। ठीक है, लेकिन ये कम से कम आप बात समझ लें कि ये सारी ऑथेंटिक हदीस होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला, और कोई भी बात मैं अपने तौर पे नहीं कह रही होती। ठीक, अच्छा, तो अच्छा, अल्लाह ताला के जो दो बहुत महबूब नाम है, अब्दुल्लाह नंबर टू, अब्दुर्रहमान। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि ये दोनों नाम अल्लाह के नाम है। अच्छा, अब ये एक सिर्फ नाम है रहमान, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत उतार दी, किसी और अल्लाह के नाम के ऊपर पूरी सूरत नहीं है। और पूरी सूरत क्या एक्सप्लेन कर रही है पता है आपको, सूरत और रहमान में क्या एक्सप्लेनेशन है, अल्लाह ताला का ये नाम, इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी सूरत, कि रहमान कैसा है, रहमान ऐसा है, रहमान ने ये किया, वो जिसने ये किया वो है रहमान, वो जिसने ये किया वो है रहमान। ये पूरी सूरत अल्लाह ताला के इस एक नाम के ऊपर ही है, उसी के एक्स में, और कोई बात नहीं है उस पूरी सूरत में। तो कितना जबरदस्त नाम है। और अक्सर आप देखेंगे नाम कुरान करीम में जोड़े जोड़े की सूरत में आए। ये अल्लाह ताला का जो नाम अर रहमान है ना, ये यहाँ पे तो अर रहीम के साथ आया है, मगर ये हार्डली पेयर होके और कहीं आया, हार्डली। ठीक है, दूसरा अल्लाह ताला का नाम अर रहीम, वो उसमें भी रहम का ही है बात, रहम करने वाला, उसमें भी यही बात है, पर उसमें भी एक्सटेंसिव है कि बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला, बहुत ज्यादा, यानी मुबालगा है उसके अंदर भी। अब क्या फर्क है इसके अंदर, अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि अर्रहमान वो है कि जब भी उससे मांगा जाए तो अता करता है, और अर्रहीम वो है कि जब उससे कोई ना मांगे तो वो नाराज होता है। जैसे एक शफीक मेहरबान उस्ताद होता था, वो कहता है कि मेरा स्टूडेंट रहनुमाई के लिए मारा मारा क्यों फिर रहा है, वो क्यों उधर उधर जाता है, मेरे पास आए। या एक माँ है, उसकी ख्वाहिश होती है उसकी औलाद दर दर ना जाए अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान, वो नहीं चाहता कि उसकी मखलूक कहीं भी अपनी जरूरत के लिए परेशान होती फिर, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता कि जब मखलूक ना मांगे। ठीक है, वो अता करता है, उसी से मांगना चाहिए। ओ देखिए, दुनिया में आप किसी से दो चार दफा मांग ले तो वो नाराज होते हैं, अल्लाह ताला तब नाराज होता है जब उसे ना मांगा जाए। तो मांगने से कभी पीछे ना हटे, मांगे। बाज लोग कहते नहीं, छोटी सी चीज के अल्लाह से मांगनी, ये तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। नहीं, कोई चीज भी हम खुद नहीं कर सकते। जूते का तस्मा भी मांगना है ना, तो हदीस में आता है अल्लाह से मांगो। सहाबा कराम के पास नमक खत्म हो जाता तो वो भी अल्लाह से मांगते थे। ठीक है, आप सबब इख्तियार करते हैं, आप जाएंगे कोई चीज कहीं से लेकर आएंगे, लेकिन मांगेंगे अल्लाह से। ठीक, अच्छा, दूसरा एक और अरबी कायदे के मुताबिक अर रहमान का माना जो है ना, इसमें क्या आता है, एक्सटेंसिव होना। एक्सटेंसिव समझते हैं ना, यानी इसमें वुसत है कि बहुत ज्यादा उसकी रहमत, यानी उसकी रहमत अपनी सारी मखलूक पे छाई हुई है। इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत है, सुभान अल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की रहमत ही है जिसकी वजह से ही आप दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत करते हुए देखते हैं। अगर माँ बच्चे से मोहब्बत कर रही है ना, तो अल्लाह की रहमत है। उस वो देखें, ये हदीस से आपको सही समझ आएगी बात, कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 100 हिस्से किए। ठीक है, उनमें से एक हिस्सा जो था, ये हदीस में आता है कि एक हिस्सा जो था वो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उतारा और उसको बांट दिया सब में, और 99 हिस्से उसके पास हैं। वो एक हिस्सा जो उसने दुनिया में उतारा है ना, इस एक हिस्से की वजह से जानवर भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जानवर भी अपने बच्चे के लिए आगे खड़ा हो जाता है, माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, शोहर बीवी में जो मोहब्बत है, बहन भाइयों में जो मोहब्बत है, रिश्तेदारों में जो मोहब्बत है, पड़ोसियों में, दोस्तों में, ये जो आपस की मोहब्बत के जितने भी ताल्लुकात आप देखते हैं ना, ये उस एक रहमत का नतीजा है जो बटी हुई है, तकसीम हुई भी जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उस वक्त से भी पहले से जितने भी जिन्नात थे या फरिश्ते हैं या और कयामत तक जिसने भी आना है, सबको ये एक रहमत मिली हुई है जिसकी वजह से कोई किसी का ख्याल करता है, कोई किसी को पूछ लेता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी से हमदर्दी करता है। हमें आज अल्लाह ताला हमें माफ करे, हम इतने जाहिल है ना, जब हम ये बात करते हैं आए अल्लाह ताला तो कोई किसी की वो परवाह नहीं है, वो तो फलाने वहां पे भूख से मर रहे हैं, अफ्रीका में ऐसे हो गया, फलाने को साथ ये क्यों अल्लाह ने कर दिया, फलान के साथ ये, इसलिए कि जहालत हमारे अंदर इतनी ज्यादा है तो हम ऐसी बातें करते हैं। अगर हमें पता हो कि ये जो आज अगर मदर टेरेसा के आप गुण गाते हैं, या आप किसी और जितने भी जिन्होंने भी फलाही काम किए, आप उनकी कोई बात करते हैं, तो वो सब जो भी काम करके दुनिया से गए हैं या जो आज दुनिया में काम कर रहे हैं, कोई भी फलाही काम, तो ये उनका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने रहमत में से एक हिस्सा उनको दे दिया, उसकी रहमत है जो उसने तकसीम की है। अगर अंदाजा करें कि उस एक रहमत का कितना छोटा छोटा जर्रा, जैसे सारी मखलूक के अंदर बटी हुई है ना, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम, किसी को, लेकिन अगर सारी मखलूक उस एक रहमत की वजह से चल रही है और हर माँ अपने बच्चे को उसकी देखभाल कर रही है, अंदाजा करें जिस रब के पास वो 99 रहमतें होंगी, उसकी रहमत का अंदाजा कर सकते हैं। वो कितना मेहरबान होगा, वो कितना शफीक होगा, उसकी मेहरबानी कितनी ज्यादा होगी। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज्यादा है, अल्लाह ताला ने जब सारी मखलूकात को पैदा फरमाया और हर एक की तकदीर का फैसला फरमाया, तो एक किताब में जो अर्श पे अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला ने ये लिख दिया। क्या पता है आपको, यहाँ हमें बैठे हुए नबी रसूलुल्लाह ने हमें ये बताया, अल्लाह ताला ने उनको ये बात बताई है, किसी ने जाके तो नहीं अर्श पे देखा, लेकिन एक किताब में ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने नबी से, नबी ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है, इन्ना रहमती तगलिबु गदबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। सुभान अल्लाह। अगर यानी किसी के आमाल ऐसे हैं कि वो रहमत और गुस्से दोनों का मुस्तहिक होता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ रहमत का मामला फरमाते हैं, उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। और ये अल्लाह ताला ने अपने लिए खुद लिखा है, कोई अल्लाह पे कोई चीज लाजिम नहीं कर सकता, ये अल्लाह ने अपने ऊपर खुद लाजिम की है। जब वो मखलूकात को वजूद अल्लाह दे दिया, तब अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए कोई कोई इंसान, कोई मखलूक, कोई रूल्स डिफाइन नहीं कर सकती अल्लाह के लिए, अनलेस अल्लाह ताला अपने लिए कोई खुद रूल बना ले, तो अल्लाह ने अपने लिए खुद बनाया ये। सुभान अल्लाह। वरना उसका गुस्सा कोई मखलूक बर्दाश्त ना कर सकती, कोई चल ही नहीं सकता था इस जमीन के ऊपर, कोई नहीं चल सकता था। अल्लाह ताला अगर अपना गुस्सा फरमाने लगता, फिर सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कतबा अला नफ्सिह रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया, लिख दिया अपने ऊपर, फर्ज कर लिया अपने ऊपर रहमत को। सुभान अल्लाह। पर ये इसमें कितनी उम्मीद है इस बात के अंदर, इसीलिए अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि कोई उससे मायूस हो जाए। हाँ, मगर ये जरूर है कि बंदा दलेर ना हो और ये ना कहे कि मैं जो मर्जी करता हूं अल्लाह ताला की रहमत है वो खुद ही माफ करेगा। नहीं, उसकी रहमत पाने के लिए तुम्हें उसकी तरफ रुजू करना है, तुम्हें उसकी तरफ बढ़ना है कि मुझे अल्लाह तेरी रहमत चाहिए। ठीक है। और अल्लाह ताला की जो नाम है अर-रहमान, इसमें उसकी आम रहमत है, जिसकी रहमत सारे आलम के लिए, सारी कायनात के लिए, जो कुछ पैदा हुआ आज तक और जो कुछ होगा उसके उसके ऊपर हावी है उसकी रहमत। सुभान अल्लाह। इसीलिए कोई और मखलूक रहमान हो ही नहीं सकती ना। बताएं किसी, कोई और मखलूक में इतना रहम है कि यानी अल्लाह ताला की रहमत देखें कैसी है, जो रहमान में एक्सटेंसिव जो आपको बता रही है ना रहमत, यानी किसी खास नस्ल के लिए नहीं, किसी खास कौम के लिए नहीं, किसी खास खानदान के लिए नहीं, किसी खास जमाने के लिए नहीं, कि हम तो किसी के साथ रहम करने लगे तो ये हमारा रिश्तेदार है इसलिए, ये हम मुझे पसंद है इसलिए, ये मेरे मेरे मुल्क का इसलिए, ये मेरी कौम का इसलिए, नहीं, अल्लाह की रहमत सबके लिए है। और वो देखो कि देखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की रहमत उसके लिए भी है। वो मुशरिक जो अल्लाह को गाली देता है, उसकी औलाद ठहरा के अल्लाह ताला ने फरमाया इब्ने आदम मुझे गाली देता है, जब वो कहता है कि अल्लाह की औलाद है, ये अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह की रहमत उस पे भी है। देखो अल्लाह उसको भी खिला रहा है, पिला रहा है, पाल रहा है, हिफाजत कर रहा है उसकी। कितने शर होते हैं इंसान के इर्द गिर्द, कितने जिन्नात और शयातीन है उसको तो वो पता है अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हुए हमारी हिफाजत के लिए, ये उसकी रहमत है। वरना हदीस में आता है कि ये जिन्नात शयातीन इंसान को भंबोड़ दें, उसको तो रहने ना दें, तो लेकिन अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए रखे हैं, तो काफिर की भी हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं, आंख की हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, उसके जिस्म की हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, अल्लाह उसको तकदीर में लिखी हुई चोट उसको नहीं लगती, वो फरिश्ते साथ हिफाजत के लिए लगे हुए। अब मुझे बताएं क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं है, उसको भी सांस देने का मौका दे रहा है जो अल्लाह का कुफर कर रहा है, और शैतान को भी उसने ढील दे दी, ये भी उसकी रहमत का ही तो हिस्सा है, ये शैतान को भी उसने जाने दिया कि जा तुझे कयामत के दिन तक की मोहलत है। तो अर्रहमान अर्रहमान, हमें पता ही नहीं है ये नाम कितना अजीम है, हमें पता ही नहीं, अगर हमें पता हो इस नाम की डेप्थ तो हम हैरान हो जाएं। यानी हदीस में इतने हद तक आता है कि अगर काफिर को अल्लाह ताला के पास मौजूद तमाम तर रहमत की वुसत का अंदाजा हो जाए तो वो कभी जन्नत से मायूस ना हो, यानी काफिर को भी अगर पता चल जाए ना कि अल्लाह की रहमत कितनी है तो वो भी कहेगा कि मैं भी जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह हू अकबर, इतनी उसकी रहमत है। तो रहमान में क्या है, एक्सटेंसिव होना, और ये नाम अल्लाह ताला का 57 टाइम्स आया कुरान में। और अर्रहीम, रहीम इंटेंसिव, इंटेंस, एक एक्सटेंसिव इंटेंसिव को समझते हैं ना, यानी इंटेंस है जिसपे है मुकम्मल है। और उलमा कहते हैं कि अर्रहीम अल्लाह ताला आखरत में है, अर्रहमान क्या है दुनिया में है, दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए है, लेकिन अर्रहीम अल्लाह ताला कहाँ है, आखरत में है, क्योंकि वहां पे वो सिर्फ मोमिनों के ऊपर रहम करेगा मुकम्मल। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कौन सी सूरत है, सूरह अजाब वकाना बिलमुमिनीना रहीमा, तो अल्लाह ताला की रहमत मोमिनों के लिए, और रहीम के अंदर ईमान वालों पर स्पेसिफिक रहमत का जिक्र है, तो मोमिनों को वो उस दिन माफ करेगा, उनको जन्नत में दाखिल करेगा, उनसे दरगुजर करेगा, ये अल्लाह ताला की सिफत है रहीम में। तो अल्लाह ताला ने अपनी ये दो सिफात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दी और हमें समझा दिया कि देखो याद रखो तुम्हारा रब बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा ही रहीम है, और किस हद तक के कितने दर्जे तक वो अपनी मखलूक पर मेहरबान है इसका इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता, अंदाजा नहीं कर सकता। आप देख लें कि हम बाज दफा किसी काफिर किसी मुजरिम को सोच के कहते हैं कि अल्लाह इसको पकड़ता क्यों नहीं है, इसको तो ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला का रहम होता है कि अल्लाह ताला चांस देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, ताकि किसी वक्त हो के कोई पलट आए, ये उसका रहम होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी ज्यादा रहम करने वाला है जितना कि माँ अपने बच्चे पर रहम करती है, और फिर भी हमें अल्लाह से शिकायत होने लगती है, अस्तग़फिरुल्लाह कि अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। माँ अपने बच्चे पर जितना रहम करती है उससे ज्यादा अल्लाह ताला रहम करने वाला है। सोच ले ना, आपके 99 रहमतें हैं उसके पास, और कयामत के दिन अल्लाह वो 99 रहमतों के अलावा ये जो एक रहमत है ना दुनिया में उसने उतारी, ये एक हिस्सा भी ले लेगा, और सारे 100 हिस्से अल्लाह के पास होंगे, उनके जरिए अल्लाह रहम फरमाएगा। तो सोचें उस दिन अल्लाह ताला की रहमत कितनी होगी। और ये अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह एक रहमत है, हम सब जो भी जितनी यहाँ पे माएं सुन रही हैं वो थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर हमारे बच्चे को जरा भी कोई तकलीफ होती तो हम कैसे बेचैन हो जाते, और बच्चा बीमार हो जाता है तो हम रात बरात भर जागते, हमारा ये दिल करता है कि बच्चे को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे, बच्चा रोता है तो माँ रोती है, उसका दिल रोता है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए माँ उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, माँ कहती मैं खुद भूखी रह जाऊं इसका पेट भर जाए, जागती है, उसको सुलाती है, खुद गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेती है, कहती इसको आंच ना आए। तो ये क्या है? ये वो राफत और शफकत है ना, जो अल्लाह ने उस रहमत की एक हिस्सा इसको दिया। अंदाजा करें फिर उस अरहमुर राहिमीन का रहम, कि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो अरहमुर राहिमीन है, यानी तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, फिर भी लोग अल्लाह से बदजन हो जाए और उसके ऊपर एतराज करने लगे। तुम किसी के हमदर्द नहीं हो सकते जितना अल्लाह हमदर्द है। तुम्हें देख के रहम आता है किसी के ऊपर, ओह इसको अंधा क्यों बनाया, तुम उसके ज्यादा उसके ऊपर रहम करने वाले हो। तुम जब कभी अपनी जुबान खोलो इस पे, तो सोचो कि एक उस रहमत का जर्रा मेरे पास है जिसकी वजह से मुझे इस पे रहम आ रहा है, तो अल्लाह तुझे कितना आता होगा, तेरे पास तो 99 रहमतें हैं। अगर कभी ये दिल में ख्याल आए इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, फलां के साथ ऐसा क्यों, हमेशा सोचे मैं क्या उसके ऊपर रहम करूंगी, या मुझे क्या इसके ऊपर तरस आ रहा है, या मैं कौन सी बड़ी रहम करने वाली हूं, मैं वो इस चूंटी के बराबर या उससे भी कम रहम जो मुझे मिला है उसके जरिए रहम कर रही हूं। अल्लाह तुझे कितना रहम आता होगा इस पे। और मां को भी किस बच्चे पे सबसे ज्यादा रहम आता है, जो कमजोर होता है, जो छोटा होता है, तो अल्लाह ताला को भी जो उसके कमजोर बंदे होते हैं उनके ऊपर बड़ा रहम आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदी पेश किए गए, तो एक कैदी अपने बच्चे, औरत थी वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। जब उसका बच्चा उसको मिला, देखिए ना अब जंग का आलम है, कोई किसी को किसी का पता नहीं है, अब किसी का बच्चा गुम हो जाए किसी माँ का, अब सोचो उस माँ का हाल क्या हो जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन आप देखते हैं ऐसे वाकयात जहाँ पे किसी का बच्चा अगवा हो जाए, गुम हो जाए, वो माएं तो ना उनके लिए जिंदगी है तो ना मौत है, ऐसे वो तड़पती है। तो वो जब उस माँ का बच्चा गुम हो गया, वो ढूंढती फिर रही अपने बच्चे को, जब बच्चा मिलता है तो वो उसको मोहब्बत से कैसे सीने से लगा लेती है और दूध पिलाने लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस माँ से ज्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला है, अरे हर तरह से अपने बंदों पे रहम करता है। तो इसलिए वो जात माँ बाप से ज्यादा रहम करने वाली, कि माँ बाप की बार बार इसलिए बात आती है कि माँ बाप से ज्यादा कोई भी सिंसियर नहीं होता, कोई भी इतना होंगे सिंसियर और लोग होंगे, लेकिन जितने माँ बाप होते हैं ना अपने बच्चे के लिए, उस तरह से कोई नहीं होता। तो जब बंदा किसी दुश्मन के खौफ से या मुसीबतों की वजह से या कोई परेशानियों की वजह से कोई मसलों में फंस गया है, किसी ऐसे गम में मुब्तला हो गया है, कोई ऐसी चीज उसके ऊपर टूट पड़ी है आफत, तो उसमें जब वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है और उसके दरवाजे पर अपने आप को डाल देता है और उसके सामने रोते हुए अपने रुखसार उसकी चौखट पे खाक में रगड़ता है और कहता है, ए रब उस बंदे पर रहम फरमा जिस पर तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं, तेरे सिवा जिसका कोई मददगार नहीं, तेरे सिवा जिसका कोई ठिकाना नहीं, तेरे सिवा कोई जिसका फरियाद रस नहीं, मैं तेरे सामने हूं, मैं आजजी करने वाला हूं, मैं तेरा मोहताज हूं, मैं तुझसे सवाल करता हूं, तुझसे उम्मीद रखता हूं, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं, ए अरहमुर राहिमीन, ए तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक आदमी को सुना था कि वो इस तरह से दुआ कर रहा है, तो फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को अरहमुर राहिमीन कहने वालों के लिए बेकरार कर दिया। जो भी आदमी 3 दफा अरहमुर राहिमीन कहता है, फरिश्ता उसको खुशखबरी के तौर पे कहता है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला तेरी तरफ मुतवज्जे हो गया, मांग ले जो मांगना है। ये मुस्तदरक की रिवायत है। अब मांग ले जो मांगना है। अरहमुर राहिमीन, जब तूने उसको कह के पुकारा है ना, तो वो सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात तेरी तरफ मुतवज्जे है अब। तो इंसान के लिए ये भी तो अल्लाह का रहम है ना कि एक फरिश्ते को रख दिया कि जो ये कहता है। तो आप देखते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआओं में दुआ है, अन्नी मसनी यदुर व अंता अरहमुर राहिमीन, ना तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तो वो बड़ा ही मेहरबान है और उसके ये नाम बहुत ही प्यारे हैं। उसको इन नामों के साथ पुकारे, इन नामों की मिठास को समझें, इनमें कितनी रहमत है और शफकत है, इस चीज को पहचाने, और तो फिर आपको अल्लाह के ऊपर प्यार आएगा कि मेरा रब कैसा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत की दौलत अता फरमा दे। सब दौलतें पीछे हैं, ये दौलत सबसे बड़ी दौलत है जो किसी को मिल जाए, कि उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत ऐसे पैवस्त हो जाए, गढ़ जाए, कि जब फरिश्ते आए मौत के वक्त, तो दिल खोल के देखे तो उसमें सिर्फ अल्लाह ही हो, सारे दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। तो अल्लाह ताला ये दौलत हमें भी अता फरमाए, इस कुरान के जरिए जो सफर हमने ये शुरू किया है इल्म का, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ाता ही जाए। अमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाल्लाह ताला अब होमवर्क आपने लिख लिया ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की प्रैक्टिस और शऊर के साथ और प्यार के साथ, और सोच के कि किसका नाम ले रहे हैं, अल्लाह कौन और रहमान कौन, अल्लाह वो ताल्लुक जो माँ को अपने बच्चे के साथ होता है, अल्लाह वो नाम है। ये आज बिस्मिल्लाह का सुन के आपको कुछ अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी ज्यादा है, और क्या आप लोग बता सकते हैं कि उसकी रहमत का सबसे बड़ा मजहर क्या है, यानी इजहार किस चीज में होता है, कि उसने हमें कुरान दिया, ये उसकी सबसे बड़ी रहमत है। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और रहमान, रहमान कौन है, अल्लमल कुरान, जिसने कुरान सिखाया। तो इससे पता चलता है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इस रहमत को समेटने के लिए बैठे हैं, आपने अपने आप को तैयार किया इस रहमत को लेने के लिए, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है और कितनी बड़ी नेमत है जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये अल्लाह की सरासर रहमत है। तो उसने अपनी रहमत को इस तरह से उतारा है जमीन के ऊपर कुरान की शक्ल में भी, और भी उसकी बेशुमार रहमतें हैं, मगर सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस रहमत का जिक्र किया। इवन हमें इंसान बनाया इससे भी पहले अल्लाह ताला ने अल्लमल कुरान बताया। तो कभी इस रहमत को लेने से पीछे ना होइएगा, हमेशा आगे बढ़ के इस रहमत को सीने से लगाएं, और इस पर हमेशा शुक्र अदा करते रहिएगा। जब भी आपकी क्लास मुकम्मल हो तो शुक्र अदा करें, क्यों, आपको रहमत का एक हिस्सा मिल गया। अल्लाह हू अकबर। तो इंशाल्लाह ताला इन बातों को किसी के साथ हम शेयर करेंगे, ये होमवर्क है हमारा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين شكر اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو سمجھا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ یہ نوٹ کر لیجئے سب لوگ کہ ہماری جو نیکسٹ ویک کی کلاس ہے وہ بجائے فرائیڈے کے انشاءاللہ وینسڈے کو ہوگی، یعنی 28 کو کلاس ہونی تھی فرائیڈے کو، تو انشاءاللہ 26 کو ہوگی،
और वजह यह है कि हमारे यहाँ पर यूएसए में थैंक्सगिविंग ब्रेक है, यानी थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी होती है, इसलिए चूंकि सब के घरों में बच्चे वगैरह होंगे तो इसलिए बेहतर है कि हम इंशाल्लाह वेंसडे को क्लास कर लें। तो आप लोग इसी टाइम पे क्लास में हाजिर होइएगा, फ्राइडे की जगह वेंसडे को, इसको नोट कर लें सब और आगे भी पहुंचा दें, ग्रुप्स में भी ये अनाउंसमेंट कर दी जाए। ये क्लास बहुत अहम होगी क्योंकि इसमें पहली आयत हम पढ़ेंगे, तो इसलिए सब लोग इस क्लास में जरूर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आज क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फ्राइडे सही इंशाल्लाह, यानी इसके बाद के जो जो फ्राइडे की हमारी क्लास होगी उस पे इंशाल्लाह होंगे, नेक्स्ट क्लास में भी नहीं हम करेंगे, उसके बाद वाले में इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।